शांति। आदरणीय राजू भाई जी का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं, आप राजू भाई मुरली के नाम से प्रसिद्ध हैं और बाबा के घर से जो मुरली जाती है वो मुरली डिपार्टमेंट, यानी उस मुरली को टाइप करना, उसको प्रिंट करवाना और ये सारी जिम्मेवारी आपकी है। साकार मम्मा बाबा के समय से आप भी ज्ञान में हैं। 1960 में कानपुर के पास एक गांव में आपका परिवार ज्ञान में आया और तब से ही परिवार में ही ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई। 1972 से आप यहां मुख्यालय में समर्पित हुए और शुरू में अनेक डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं देते रहे और फिर 1976 से आप ने सिंधी भाषा सीखी और उसके बाद से ही मुरली का अनुवाद करना आपने प्रारंभ किया। अभी मुरली में जो प्रश्न उत्तर, वरदान, सार, स्लोगन ये सब आता है, ये आप ही अपने ईश्वरीय विद्यार्थियों की उन्नति के लिए निकालते हैं। इसके अलावा जो पुस्तकें अव्यक्त महावाक्यों को लेकर के बनाई गई हैं वो भी आपके द्वारा ही बनाई गई हैं। ऐसे ही जो पत्र पुष्प हर मास निकलता है, हर मास जिसमें अव्यक्त इशारे, दादियों की क्लासेस, कोई विशेष समाचार वगैरह भी जाते हैं सेवा केंद्रों पर, वो भी उसके निमित्त भी आप ही हैं। दादियों को जो लेटर्स आते हैं उनको जवाब देने के निमित्त भी आप हैं। या हम कहेंगे कि यज्ञ की जो विशेष कारोबार है दादियों के अंग संग रह करके वो आप संभाल रहे हैं, वरिष्ठ भ्राता हैं आप और बहुत ही सबके स्नेही सहयोगी, पालना देकर के, उमंग उत्साह बढ़ा करके आगे बढ़ाने वाले आपके स्वभाव हैं। तो अभी हम इस योग की गहराई और ऊंची स्थिति और उसके साथ साथ योग के प्रयोग हम कैसे करें इस विषय पर हम आपसे सुनेंगे।
ओम शांति। बाबा के इस मधुबन घर में योग लगाने की मेहनत तो नहीं करनी होती, करते हैं कोई मेहनत? यहाँ तो बड़ा सहज, बाबा के यादगार चरित्र स्थान बने हुए हैं जहाँ स्वयं ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, हमारी दादियों ने तपस्या की। उस स्थान पर आते ही वो वाइब्रेशन जो हैं योग सहज कर देते हैं। तो अच्छे अनुभव हो रहे हैं सभी के, 24 घंटा तो हो गए ना। योग के गहरे अनुभव, वास्तव में योग शब्द को बाबा ने कहा इसको याद शब्द में परिवर्तन कर दो। जब योग योग कहते हैं तो थोड़ी मेहनत लगती है। बाबा को प्यार से याद करो, और योग शब्द से मिलन प्राप्तियां अनेक प्रकार की स्वतः होने लगती हैं। तो हम सब सहज योगी राजयोगी बाबा के बच्चे सवेरे से रात तक बाबा के प्यार में समाये रहते, उनका ही चिंतन करते, उसी में रमण करते। इसलिए मैं समझता हूँ ब्राह्मण जीवन में योग की मेहनत तो नहीं होगी। लगता है माताओं को कभी कभी होता है कैसे योग लगाएं, योग में मन बहुत भटकता है। लेकिन योग का आधार ज्ञान है, समझ है, और जब वो ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया, स्वयं की पहचान दी, तो उस स्वरूप में स्थित होते ही जो एक मन की नेचुरल आदत बनी हुई है विचार करने की, उन विचारों पर कंट्रोल आ गया, संकल्पों पर ब्रेक लगने लगी। अगर योग के गहरे अच्छे अनुभव करने हैं तो विचारों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर विचारों पर नियंत्रण नहीं है, जो आया सोचते रहते हैं, तो योग के अच्छे अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हम सब का ध्यान अपने चलने वाले सवेरे से रात तक के विचारों पर अवश्य होना चाहिए, संकल्पों पर होना चाहिए। किस प्रकार के संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर संकल्पों की क्वालिटी अच्छी बना ली जाए, जो मेरे काम के संकल्प नहीं हैं, उन संकल्पों पर रोक लगा दी जाए, और जो काम के संकल्प हैं, क्योंकि संकल्प के बिना तो इस शरीर के अंदर कुछ सेकंड भी आत्मा नहीं रह सकती, संकल्प तो सदा ही रचती है, करती रहती है। लेकिन कई प्रकार के संकल्प चलते हैं, वो संकल्प काम के हैं या नहीं हैं, व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, साधारण हैं, अगर उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं तो संकल्पों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, समझ दी है, आत्मा मालिक है, और मालिक बन करके जो संकल्प करना चाहे वही संकल्प क्रिएट करे। रचयिता अपनी रचना पर पूरा कंट्रोल रखे, मुझे क्या सोचना है या क्या नहीं सोचना है। तो जब हमारा अपने संकल्पों पर कंट्रोल आ जाता, तो संकल्पों के कंट्रोल के आधार से हम योग के अच्छे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव करने की शक्ति जो है संकल्प के पास ही है। अगर वो संकल्प कोई कहे हम निर्संकल्प हो जाएं, संकल्प को मार दें, संकल्प को शून्य कर दें, तो हमें योग के अच्छे अनुभव होने लगेंगे। वास्तव में बाबा ने हम सबको ये बात बहुत पक्की कराई है कि निर्संकल्प समाधि नहीं होती, निर्संकल्प आत्मा नहीं हो सकती। अगर कोई बहुत जबरदस्ती हठ क्रियाओं के आधार से संकल्प को रोकता भी है तो थोड़े समय के लिए, लेकिन जब छोड़ देगा तो फिर से चलना शुरू हो जाएंगे। हम सब योगी राजयोगी बाबा के बच्चे संकल्पों को मारते नहीं हैं, संकल्पों को दबाते नहीं हैं, इन संकल्पों से ही हम यात्रा करते हैं। ये संकल्प हमारे लिए एक वाहन का काम करते हैं। योग में जब हम बैठते हैं तो संकल्पों पर थोड़ा ध्यान दें, किधर किधर जाते हैं, बैठे हैं यहाँ पर, मुरली सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, अच्छे वातावरण में भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरफ कोई संबंध है, कोई हिसाब किताब है, जिधर उसका लगाव झुकाव है, जिधर उसके कार्य चल रहे हैं, उधर एक सेकंड में भी, उससे भी कम समय में पहुंच जाता है। बहुत फास्ट गति है उसकी, और अगर उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाए तो योग कितना भी घंटा बैठा दिया जाए आपको, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा बैठे रहेंगे लेकिन कोई अनुभव अच्छे अच्छे नहीं कर पाएंगे। ऐसे लगेगा ठीक है समय पास हो गया। बाबा हम बच्चों को योग के गहरे अनुभव और उनके प्रयोग के विषय में ध्यान खिंचवा रहे हैं। इसलिए सबसे पहला नियंत्रण है अपने संकल्पों पर, और दूसरा है कि बहुत बाह्य मुखी आत्माएं जो बहुत बोलती हैं, बहुत आवाज में आती हैं, बहुत बोल चाल की भाषा है, बोल की एनर्जी भी हमें योग में रुकावट डालती है। अगर ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कहे हम बहुत अच्छा योग करते हैं तो उसका ब्रेन शांत ही नहीं होता, थका हुआ होता है, क्योंकि योग के लिए एकाग्रता की जरूरत है। अगर एकाग्रता नहीं है तो योग के अच्छे अनुभव नहीं किए जा सकते, और एकाग्रता के लिए संकल्प और बोल, इन दोनों शक्तियों पर बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए, कंट्रोलिंग पावर। और इस पर अगर किसी आत्मा का कंट्रोल है तो सहज योगी स्वतः बन जाता है, योग के अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। अनुभव के लिए और कई बातें हैं जो सदा ध्यान पर रखनी चाहिए। एक तो बहुत हल्कापन चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का भारीपन है संकल्पों पर, शरीर पर, खान पान में, बहुत हम भारी हैं, हैवी खा रहे हैं, या कोई बातों की जवाबदारी पर बहुत ली हुई है और फिर योग में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर भटक जाती है, थकावट का अनुभव होता है, योग के अच्छे गहरे अनुभव नहीं हो पाते। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं भले सब जवाबदारियां, सब बोझ मुझे अर्पित कर दो। जब हम बाबा को सामने ला करके, बाबा के आगे अपनी सब बातें सुना करके हल्के हो जाते, तब हमारा योग सहज लगने लगता है, अनुभव अच्छे होने लगते हैं। इसलिए आप यहाँ आए हैं योग के अच्छे अनुभव करने के लिए। अगर कोई जवाबदारी यहाँ पर भी महसूस होती हो, बोझ अनुभव होता हो, तो उसकी बड़ी अच्छी विधि है, एक कागज पर आप लिख डालो, बाबा के आगे बैठ करके कमरे में जाओ या कहीं एकांत में, कुटिया में जाओ, बाबा के आगे बैठ के अपने बोझ लिखो। कोई ऐसे संस्कार हैं, कोई ऐसे कर्म हुए हैं, भूले हुई हैं, मर्यादा के विपरीत कर्म हो गए हैं, इनका चिंतन बार बार अंदर अंदर परेशान करता है, उस नेगेटिविटी को समाप्त करने की अच्छी विधि है बाबा के पास बैठ करके वहाँ ही वो संकल्प बाबा के हवाले करने के लिए कागज पर उतार दो। कोई भी बोझ ऐसा महसूस हो, जवाबदारियां हैं लौकिक की, अलौकिक की, कई व्यवसायों की, नौकरी टोकरी की, उनको भी लिख डालो, बाबा ये सब आप के बनने के बाद भी ये मेरे पर बोझ हैं, अब इसका हल आप कर दो। बाबा से रूह रिहान करके बाबा के आगे लिखो और बाबा को सुना करके बहुत सच्चे दिल से बताओ, जैसे बाप को बताया जाता है, ऐसे बता करके लिख करके फिर उस कागज को भले बाबा की भंडारी में डाल दो, या फिर नहीं समझ में आता है तो बॉयलर में डाल दो, जाके जला दो, बाबा अपने आप को सुन करके खत्म कर देगा। लेकिन सच्चाई से लिखना, तब बाबा वो बोझ लेगा, हल्का कर देगा। तो जितना आप हल्के हो जाएंगे ना, उतना जब बैठेंगे तो हल्की चीज हमेशा ऊपर जाती है। संकल्प भी हल्के हैं तो अपने आप ऊपर जाने लगेंगे, वो प्रवाह ऊपर की तरफ खींचेगा। तो एक हल्कापन, दूसरा बाबा हम सबको कहते हैं खुशी के संकल्प करो, अच्छे अच्छे नशे और खुशी के संकल्प क्रिएट करो, खुद रचो। अपने भाग्य का चिंतन करो, प्राप्तियों का चिंतन करो। संगम पर बाबा ने कितना आकुट दिया है, कितनी प्राप्तियां कराई हैं, भटकने से बचाया है, धक्के खाने से, ठोकरे खाने से बचाया है, क्या क्या दुनिया में लोग कर रहे हैं। थोड़ी सी प्राप्ति और अनुभूति के लिए भक्ति के अंदर भी भक्त लोग कितनी लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते, कितनी मेहनत करते, कहाँ कहाँ दर्शन के लिए भटकते, बाबा ने सब बातों से, सब चक्करों से मुक्त कर दिया। जो संगम युग पर इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है, इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची पालना, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना श्रेष्ठ परिवार, इतना अच्छा संग, अगर बहुत पॉजिटिव रूप में इस प्राप्तियों का चिंतन किया जाए, कई लोगों को अपने भाग्य को सुमिरन करना भी नहीं आता है। कमजोरियों का सुमिरन चलेगा, कोई ने कुछ उनके साथ किया है तो उसका सुमिरन करके अपनी खुशी को गायब कर देते। अगर योग के अच्छे अनुभव करने हैं तो बहुत खुश नसीब, खुश नुमा, खुश मिजाज, बहुत खुशी के संकल्प क्रिएट करो। और उसके लिए रियल जो प्राप्तियां हुई हैं, ये आर्टिफिशियल बातें नहीं है, सिर्फ हमें सिर्फ सुना रहा हूं आपको, मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है, लेकिन हम अंदर जाते हैं, हम अपने ही जीवन को देखते हैं, बाबा आपने कहां से किधर किचड़ में पड़े थे, किस गांवने के छोरे थे, कहां से आपने निकाला, क्या से क्या बनाया, कितना श्रेष्ठ भाग्य दिया, आज अगर हद के परिवार में होते क्या लोगों की जीवन है, आज हम सब की उम्र के लोग कैसे लगते हैं, एकदम जैसे कोई रस ही नहीं, कोई जीवन का सार ही नहीं, कोई खुशी नहीं, कितना तनाव है, कितने प्रकार के झंझट हैं, कहां कहां लोग फंसे हुए हैं। जब हम उन बचपन के साथियों को कभी मिलता हूं तो देखता हूं ये क्या है और हम क्या हैं, क्या बाबा ने आप बना दिया हम सबको। भविष्य में देवता बनेंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन संगम पर बाबा ने इतनी प्राप्तियां कराई, इतना श्रेष्ठ जीवन बनाया, इतना निश्चिंत बनाया, जो हम सबके दिल में यही रहता है, बाबा अप्रापत नहीं कोई वस्तु, अप्रापत नहीं कोई शक्ति, मुझ ब्राह्मण आत्मा के खजाने में सब प्राप्तियां संगम पर बाबा आपने करा दी। तो ये जो प्यार है बाबा के प्रति, जो प्यार है वो अंदर की खुशी को प्रज्वलित करता है, उत्पन्न करता है। और जितना आत्मा खुश नसीब अनुभव करती है, संगम युग के भाग्य का चिंतन करती है, उतना वो प्यार में खो जाती है। तो योग की गहरी अनुभूति के लिए एक बहुत सच्चे दिल का प्यार, एक खुशी, एक हल्कापन। जो आत्माएं उस तरफ ध्यान देती हैं, उसका योग ऐसा लग जाता है वो योग करता नहीं है। बाबा अपने बच्चों को दो प्रकार के क्वालिटी बताता है, कहता है एक है मुझे दिमाग से याद करने वाले बच्चे, बहुत दिमाग चलाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, चिंतन करेंगे, कमेंट्री देंगे, उलझे रहेंगे, फिर मैं परमधाम जा रही हूं, फिर ऊपर गई, वहां गई, जाते कहीं नहीं, बैठे ही हैं, सुनते रहते हैं। दिमाग वाले बुद्धि से अलग अलग चिंतन करते रहते, उठ जाते हमने योग कर लिया। अब एक भोले बच्चे हैं जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं, बस बाबा बाबा बाबा, सच्चे दिल से बाबा के प्यार में खो जाते। उनको बाबा इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराता है, क्या मैं आपको बताऊं। एक माता के पास मैं गया, एक अनुभव सुन रहा था, यहाँ एक नजदीक में गांव है, कहती है मधुबन से डायरेक्शन आया रात को जाग करके अमृत वेले योग करना है सबको, 18 जनवरी के कारण यहाँ से डायरेक्शन कोई ऐसा गया था। अब गांव के लोग बेचारे, सेंटर भी कोई ऐसा नहीं बना हुआ, मंदिर में क्लास चलता था, डायरेक्शन गया लेकिन उनके अंदर लगन बड़ी थी, बाबा के मधुबन से डायरेक्शन आया है, हम सब योग करेंगे। तो 70 लोग उस मंदिर में इतनी ठंडी में जनवरी महीने में योग करते थे 4 बजे का, कोई कोई दीवार नहीं, कोई बिछाने के गद्दे नहीं, दरी पर ऐसे ही चटाई डाल करके। तो मुझे आया समाचार मिला कि यहाँ पर गीता पाठशाला में मंदिर के अंदर 70 लोग योग करते हैं रोज, तो नजदीक है यहाँ से आधा पौना घंटे पर। तो हमने कहा चलो एक बार मिल के आते हैं, पूछते हैं क्या अनुभव होते हैं आपको, क्यों ऐसा योग करते हो। तो जब मैं उस गांव में गया, क्लास करा रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप लोग देखो मंदिर के अंदर खुली हवा, बंद कमरा भी नहीं है, इतनी शीत लहर चलती है, इतनी ठंडी, और सब ठंडी में उठ उठ करके गोदरी ओढ़ करके ऐसे आके बैठ करके योग करते हो, क्या अनुभव होता है, क्यों इतनी मेहनत करते हो, बाबा तो सहज योगी बनाता है, क्या जरूरत है उठने की। कहते नहीं भाई जी, बाबा का मधुबन का डायरेक्शन है और मुझे बाबा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराता है। क्या अनुभव कराता है? तो एक बुढ़ा आदमी, बिल्कुल बुजुर्ग था, 70-80 साल का होगा, बैठा था, तो ऐसे बैठे बैठे बोलता है भाई जी बताऊं, बाबा सब सामने जो फोटो लगाया ना, ये बाबा का फोटो नहीं है, बाबा की मूछें हिलती हैं, बाबा के होठ हिलते हैं, बाबा पैर भर बदलता है, बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मैं बाबा का प्यार लूटने के लिए बैठता हूँ, सवेरे सवेरे आ जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है पौना घंटा एक घंटा कैसे हो गया, मैं बाबा के प्यार में खोया रहता हूँ, बाबा मुझसे बातें करते हैं। अच्छा, मुझका सुना। फिर मैंने माताओं से पूछा, माता है तुमको क्या अनुभव होता है? तो एक माता खड़ी हुई, वो बोलती है भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मैं परिवार में मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते, उन्होंने देखा है ब्रह्मा कुमारियां रोज सवेरे सवेरे उठ करके सबको योग कराती हैं, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी मेरे खेत में लगा दी, खेत में जानवर घुस जाते हैं तुम पहरा दो जाके। तो मैं पहरा देने के लिए अब मुझे जाना पड़े शाम को 8 बजे, नहीं तो मैं भाग करके सुबह उठ करके योग में चली जाती थी। तो जब मैं पहरा देने के लिए गई तो मैं बाबा को बोला, बाबा ये क्या मुसीबत आ गई, हमको तो योग करना है, आपका डायरेक्शन है। तो कहती बाबा से मैंने बहुत झगड़ा किया, बहुत प्यार से बोली मैं बहुत झगड़ा किया। बाबा को बोला, बाबा कुछ करो, कोई युक्ति बताओ, मैं क्या करूं जो मैं अमृत बेला योग करूं। तो कहती उस दिन जब बाबा के ऐसे चित्र के आगे बैठ करके बहुत रूह रियान किया, बहुत रोई, बहुत बोला बाबा को, और खेत पर गई तो जाते ही उस खेत पर मैंने एक ऊपर से लाइट देखी, शिव बाबा की चमकती हुई लाइट, और वो लाइट ऐसे आई और बीच में ब्रह्मा बाबा ऐसे आके खड़े हो गए मेरे। कहते बच्ची तेरे को योग करना है ना, तेरे खेत पर मैं पहरा दूंगा, अब तुम जाओ सो जाओ जाकर के, और कुछ नुकसान नहीं होगा, मैं पहरा दे दूंगा और तुम अमृत बेला योग करना। उसको आवाज आ रही, कहती मैं निश्चिंत हो गई, बाबा मेरे खेत पर पहरा देता है, और मैं सो गई और फिर सवेरे सवेरे उठ करके योग में जाने लगी। तब से मैं रोज योग करती हूँ और बाबा मेरे खेत में पहरा देता है। क्या है ये? दिल का प्यार है ना, ये भावनाएं है ना। तो दिल का योगी, दिल का प्यार करने वाला, उसको कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। बाबा के प्रैक्टिकल पार्ट को देखता है वो अनुभव करता है कि उस समय साकार में बाप दादा क्या नहीं कर सकता है, भले अव्यक्त है लेकिन कोई सच्चे दिल से। कई बार बाबा कहते हैं ना, बच्चे सच्चे दिल से कहो तो मेरा बाबा, योग क्या है, सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब ऐसे ऐसे भोले बच्चे जो बहुत भावना से दिल से बाबा कहते हैं, प्यार में खो जाते हैं, बाबा उनके स्थूल काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो हम सब योग के गहरे अनुभव करके कई बार अपने मन को बहुत भारी कर लेते हैं, सोचते रहते हैं मेरा मन तो एकाग्र नहीं होता, मेरे तो अनुभव नहीं होता। फिर यहां सोचेंगे ऐसा लाइट जल रही है और फिर कहेंगे मेरे सिर में दर्द हो गया, ये कोई योग है? सिर में दर्द हो गया योग है? ध्यान रखना ये सहज योगी जीवन है, बहुत सरल सीधी जीवन बनाओ, बाबा से एक नेचुरल रूह रियान करो, संबंध जोड़ करके रखो, और संबंध जुड़ते जुड़ते प्यार बढ़ते बढ़ते वो प्यार एक असीम सीमा पर पहुंचेगा, जिसको कहते हैं लगन अग्नि का रूप ले लेती है, योग अग्नि का रूप ले लेता है, और उस अग्नि में विकर्म दग्ध होते हैं। अब अग्नि, योग तो अग्नि है नहीं वास्तव में, ये तो प्यार की आग है, अंदर से प्यार उमड़ रहा है, वही अग्नि का काम कर रहा है। तो अगर हमारा बहुत जिगरी बाबा से प्यार बढ़ जाए और उस प्यार में हम खो जाएं, समा जाएं, प्यार के सागर में लहराने लगे, तो मन बुद्धि भटकना अपने आप बंद कर देगा। किधर जाएगा? बाबा 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 का अनहद नाद अंदर गूंजेगा और ऐसे लगेगा बाबा आपने तो सब कुछ दे दिया, सब प्राप्तियां करा दी। जब आत्मा तृप्त है, भरपूर है, संपन्न है, तो भटकेगी किधर, कहां जाएगी, क्यों जाएगी? तो ऐसे सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए बहुत अच्छे खुशी के, नशे के, हल्केपन के, कई बार बाबा, अव्यक्त बाबा की भाषा थोड़ी हाई लेवल की है, कई बार कहते हैं बच्चे देखो विमान को भी उड़ाना होता है ना, तो उसको डबल रिफाइन पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। अगर डबल रिफाइन नहीं है तो प्लेन उड़ता नहीं, उड़ ही नहीं सकता है। मोटर गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल भी चलेगा क्या? प्लेन को उड़ाना है ना, तो प्लेन को उड़ाने के लिए डबल रिफाइन पेट्रोल चाहिए। अब ये मन बुद्धि प्लेन की तरह बाबा के पास पहुंच जाए उड़ करके, रॉकेट से भी तेज तो है, लेकिन वो परमधाम सूक्ष्मतन उसके अनुभव करने लगे। जो बाबा कहता है 500 रुपयों की ड्रिल करो, मधुबन के चारों धामों की सैर करो, बैठे हैं अपने घर में, अगर पेट्रोल ठीक नहीं होगा तो यहां तक पहुंचेंगे? सूक्ष्म वतन, मूल वतन जाएंगे? और वो पेट्रोल, वो नशा, वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह, वही पेट्रोल का काम करता। अगर जरा भी उमंग उत्साह की कमी है, कोई भी आप व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, कोई ने कुछ बोल दिया मान लो आपको, और उस बोल का उसको इतना गहरा आपने उठा लिया, सोचने लगे, चिंतन करने लगे, मूड खराब हो गई, खुशी गायब हो गई, बैठ जाओ योग में, बैठे रहो घंटों, कुछ नहीं होगा अनुभव। वही संकल्प बार बार आएंगे, कंट्रोल करेंगे फिर आएंगे, कंट्रोल करेंगे फिर आएंगे। इसलिए अगर योग के अच्छे अनुभव करने तो कुछ बातों को इग्नोर कर दो, सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, जो मेरे काम की बातें नहीं मुझे नहीं देखनी। इसलिए ऐसी कोई बातें अगर पारिवारिक जीवन में समस्या के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में आ भी जाती हैं, तो उनका चिंतन करते करते अपने आप को भारी नहीं बनाओ, क्योंकि बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया जिसमें बहुत अच्छी बात, कई बार बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है, और इस कल्याणकारी ड्रामा के हर सीन में कुछ न कुछ गहरे राज भरे हुए हैं। बच्चे उन राजों को नहीं देखते हैं और ऊपर की घटनाओं का वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने आप को भारी बना लेते हैं। कुछ पिछले ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसे हिसाब किताब हैं, 84 जन्म आत्मा खेल खेल में रही है पार्ट में, और उसमें कई प्रकार के हिसाब किताब हमारे एक दूसरे के साथ बने हैं। इसी समय, अंतिम समय में हमको सब पूरे करने हैं, चुकतू करने हैं। अब वो पूरे हो रहे हैं हिसाब किताब, तो कभी कोई बात होगी, कभी कुछ होगा, नीचे ऊपर होगा, लेकिन उन बातों को हम सोच सोच करके ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा तो ये श्रीमत देता है, बाबा तो ऐसे कहता है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, व्यर्थ बातों को लेकर के उसका एक बहुत बवंडर बना देते हैं, और बवंडर बना करके उसी संकल्पों में इस दिन रात घूमते रहते, अपने को भी खराब करते, अपने संकल्पों को भी कमजोर करते, और कोई साथ मिल जाएगा तो उसको भी सुना करके कमजोर कर दे। ये व्यर्थ चिंतन जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक योग का आनंद नहीं लिया जा सकता, योग के अच्छे अनुभव नहीं किए जा सकते। इसलिए जो सीन है, जैसे दृश्य आ रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, कुछ इसमें बहुत गहरे राज है, और उस गहराई को समझ करके सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने की आदत अगर है, इसमें भी कुछ राज है, कुछ कल्याण है, कुछ भलाई है, कुछ आगे बढ़ने की शिक्षाएं हैं, तो उन दृश्यों को, घटनाओं को बार बार चिंतन में नहीं लाओ, उनको ब्रेक दे दो, फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना, ये मेरा काम नहीं है, जो करता है वो पाता है, बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, मैं क्यों इन व्यर्थ बातों की चर्चा करूं, चिंतन करूं, फुल स्टॉप लगाओ, और फुल स्टॉप लगा करके मुझे क्या करना है उस चिंतन में लग जाओ। तो संकल्प पर अगर ब्रेक देने की आदत आ गई, कंट्रोलिंग पावर है, तो ये संकल्प आपको बहुत अच्छी यात्रा कराएंगे। अंतर मन वाहन, ये जो अंदर का मन है वही हमारा अच्छा वाहन है, और उस वाहन को अगर हम अपने कंट्रोल में रखें, उसकी लगाम श्रीमत मजबूत हो, तो उसको हम ऑर्डर दे सकते हैं, चलो तुम मुझे परमधाम की यात्रा करो, मुझे आज के दिन उस परमधाम घर का अनुभव करना है, कुछ भी हो जाए और तुम मुझे करा सकता है। मन से बातें करो, बाबा से बातें करने के पहले पहले मन से बातें करो, तुम मुझे करा सकता है, मैं जानता हूं तेरे पास शक्ति है, चल तुम मुझे ले चलो। घर क्या है? बाबा कहता वहां लाल प्रकाश है, वहां आत्माओं की दुनिया है, बहुत पवित्र है, असीम शांति है, बहुत सुख है, वो आनंद है, वो क्या है घर, चल मुझे उस घर में ले चल। अब मन से बातें किया और एक सेकंड में इस देश से डिटैच अनुभव किया, बैठे आत्मा ही है लेकिन ये मन अपने आप उस घर के दृश्य को इमर्ज करेगा, और इमर्ज करके आप उस घर में जैसे पहुंच गए हैं बुद्धि से और अनुभव कर रहे हैं वो शांति का, पवित्रता का, बाबा की लाइट का, सकाश का, उस घर का ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे इस दुनिया में कोई है ही नहीं, सब संकल्प शांत हो गए, निराकारी दुनिया का आपका अनुभव होने लगा। अब सूक्ष्म वतन की बातें इतनी हम सुन रहे हैं, बाबा इतने सालों से बैठा है वतन में जाके, 48 साल हो गए या व्यक्त हुआ और वहां बैठ गया, न जन्म ले रहा है न ऊपर जा रहा है, बैठा है इंतजार कर रहा है, बच्चे आओ संपन्न संपूर्ण बनो फिर चलेंगे। इतनी सेवाओं का जो विस्तार करा रहा है, इतना सारा कार्य चल रहा है यज्ञ का, शरीर साकार में तो आप देखो कोई बड़े नहीं रहे, निमित्त आत्माएं जो थी वो भी सब चली गई जा रही हैं, इतनी बड़ी कारोबार चल रही है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है और यज्ञ का मालिक गुप्त छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, आप लोग उस नजर से देखते हैं या नहीं देखते मुझे पता नहीं, लेकिन जो नए नए आते हैं ना वो कहते हैं ये सारी कारोबार चल कैसे रही है, इसके पीछे कौन है, कोई बड़ा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, कोई मीटिंग्स पर मीटिंग नहीं हो रही। पहले पता है जब कोई भी प्रोग्राम होता था, एक छोटी सी यहां कॉन्फ्रेंस होती थी, योग शिविर जब शुरू हुआ मधुबन में, योग भवन बना मेरे सामने 74 में, योग भवन बना ये जो विज्ञान भवन के पास है, तो इस योग भवन में योग शिविर शुरू कराने के लिए दीदी दादी ने हमारे साथ हम लोगों के साथ कितनी बार मीटिंग किया, देखो यहां पर VIP आएंगे, कितनी साइलेंस होनी चाहिए, कितनी स्वच्छता होनी चाहिए, कैसी मैनेजमेंट होनी चाहिए, यहां योग शिविर शुरू हो रहा है, बच्चे बाबा के नए नए VIP आएंगे। पहली शिविर में 12 लोग, वो भी प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल आए, गुजरात से ही आए, 12 लोग आए, वो शिविर शुरू हुई, उसमें ज्ञान में सभी चल गए, कोई नहीं रहेगा, सब चले ज्ञान में, लेकिन उसके लिए इतनी सारी प्लानिंग, इतने सारे डायरेक्शंस, इतनी व्यवस्था। अगर यहां पर वो आते थे अंदर खाना खाने के लिए तो सब मधुबन वाले चुप, बोलते नहीं थे, चुपचाप शांत मौन में, मतलब इतने डायरेक्शन हम लोगों को दिए जाते थे। आज हजारों लोग आ रहे हैं शिविर में, आते हैं कितने आते हैं, 6000 आ गए, 7000 आ गए, 5000 आ गए, शिविर 3000 का रखा और आ रहे हैं 6000 7000, और कोई कहता ही नहीं कुछ, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं, कोई उनको खाना कौन खिलाएगा, उनको ऊपर कौन ले जाएगा, कौन क्लास, चलो ठीक है मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर दी गई, चल रही गाड़ी पटरी पर जैसे ट्रेन खड़ी है, स्टार्ट कर दिया और गाड़ी चल गई, ऐसे है ना कारोबार। तो नए आते हैं तो कहती इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं और कोई कहता ही नहीं और इतना अच्छा चल रहा है, अब उसको क्या पता है इसके ऊपर कोई ऊपर वाला स्विच लेके बैठा है चाबी। अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को साथी बना करके यज्ञ को कैसे चला रहा है, हम लोगों की नजरों में नहीं है लेकिन गुप्त रूप में बाबा की हर चीज पर नजर है। मेरा तो इतना ध्यान रहता है, जैसे कहते हैं ना कैमरे लगे होते हैं जगह जगह पर, लिखा होता सावधान आप कैमरे की निगरानी के अंदर हैं, आप सब इस बात को अंडरलाइन करो, स्थूल कैमरा तो फेल हो सकता है, लगा होगा लिखा होगा फिर भी शायद रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, इस कैमरे को तो कोई फेल नहीं कर सकता है, 100% बिल्कुल निश्चित बात है, हम सब के ऊपर बाबा का बहुत सुंदर अच्छे से अच्छा पावरफुल कैमरा लगा हुआ है और बाबा अपने आप गाइड कर रहा है, कई बार ये मुझे अनुभव होता है कि बाबा सारे यज्ञ की कारोबार को कैसे ऊपर से नियंत्रित कर रहा है, कैसे यज्ञ को चला रहा है, कैसे आगे बढ़ा रहा है और कैसे वो अपनी प्रत्यक्षता करके रहेगा। भले हमें साकार में दिखाई नहीं देता लेकिन बाबा की ये बहुत प्रभु लीला चल रही है, गुप्त रीति से करण करावनहार अपना काम करा रहा है। हम सब सावधान जरूर रहें, श्रीमत की अवज्ञा न करें, अलबेले न हो, कोई गलतियां न करें, ऐसे नहीं जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोई देख ही नहीं रहा है। बाबा कहता सब नोट हो रहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। अगर ये अलबेलापन हमारा समाप्त हो जाए, बहुत अलर्ट रहें, हर मर्यादा का ठीक तरह से पालन करें, व्यर्थ और नेगेटिव से बच के रहें, ये संकल्प कितने अच्छे हो जाएंगे और अच्छे संकल्पों से अच्छे योग के अनुभव होंगे। अच्छे योग के अनुभव हम कर रहे हैं लेकिन कई बार हम योग करते हैं प्रयोग नहीं करते। हमारे पास कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है तो प्रयोग तो करें। हम हमेशा एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर मेरे पास है ये शक्ति, हम जानते हैं हम योग कर रहे हैं, तो उस शक्ति को कभी शरीर पर कोई रोग आ गया, कोई छोटी मोटी बीमारी आ गई, तुरंत परेशान हो रहे हैं, भाई कुछ समय एकांत में बैठ कर बाबा की किरणों को ले तो लेकर के उनको फोकस करो, देखो ठीक होते हो कि नहीं। आज कैड प्रोग्राम चल रहा है, प्रयोग कराए जा रहे हैं, कितने हार्ट पेशेंट ठीक हो रहे हैं और बीके सारे हार्ट पेशेंट बनते जा रहे हैं, उनको भावना ही नहीं कि ऐसे भी ठीक हो सकते हैं। नए नए आकर के ठीक हो रहे हैं और पुराने कहते हैं ये तो सब ऐसे ही है, ऐसे योग पे थोड़ी हार्ट की आर्टरी खुल जाती है। बहुत भावना, बहुत विश्वास की जरूरत है। और जिस विधि से सुनाया और सिखाया जा रहा है अगर 100% कोई फॉलो करता है तो उसकी 100% आर्टरी खुल जाती है, निश्चित है। अभी मैं एक स्थान पर गया था, क्लास करा रहा था, तो सामने एक भाई बैठा था दिल्ली में ही। वो कहता है मैं 2001 में गया था, मेरी तीन आर्टरी बंद थी, एक 100%, एक 90%, एक 80%। मैं बिल्कुल सांस नहीं ले सकता था, मैं चल नहीं फिर सकता था, और मैं बाबा के घर में आया, योग सीखा और मैंने योग का प्रयोग किया। उस दिन से लेकर के जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था मैं नियमित वही पालन कर रहा हूँ, वैसी डाइट है, वैसी एक्सरसाइज है, वैसे योग करता हूँ और मेरी सब आर्टरी खुल गई। आज कितने साल, 16-17 साल हो गए, कहता मेरा कोई तकलीफ नहीं, अब कितनी मैं सेवा कर रहा हूँ। अब वो एक नया व्यक्ति आकर के यहाँ सीख करके और उस प्रयोग के द्वारा वो अपने आप को स्वस्थ बना लिया, निरोगी बना लिया। अब जिनकी भावना नहीं है, जो विवेक यूज करते हैं, बुद्धि सिर्फ चला रहे हैं, वो तो कहते हैं ये तो असंभव बात है, ये तो संभव है, कुछ भी हुआ चलो डॉक्टर के पास, पैसा दो ठीक हो जाओ, इन चक्करों में नहीं जाओ। तो ये भावनाएं बहुत काम करती है, ये है हमारे दिल के अंदर की भावनाएं। और जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्ति क्रिएट करता है, जो उस प्रकार के संकल्प से अगर यथार्थ प्रयोग करे तो कोई भी असंभव बात नहीं है। योग एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक चमत्कार है, एक जादू है। मेरा टॉपिक ही रखा था मैजिक ऑफ मेडिटेशन, VIPs के हिसाब से। और इतना बड़ा मैजिक है, अगर सचमुच इस मैजिक को हम समझ जाएं, ये परमात्म शक्तियां हैं और हम सबके पास हैं, जिनके पवित्र विचार हैं, पवित्र जीवन है, बहुत अच्छे विचारों में रमण करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। कोई भी बात उनके जीवन के लिए असंभव नहीं है, लेकिन प्रयोग यथार्थ विधि पूर्वक होना चाहिए, स्वार्थ से नहीं। विधि है एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता, और एकाग्रता के बाद स्थिरता आ जाए, स्थिर हो जाए, हलचल समाप्त हो जाए। कोई भी चीज प्रयोग करने के लिए साइंटिस्ट भी मन को बुद्धि को एकाग्र करते हैं। हाथ हिलता रहे कोई प्रयोग होगा, बुद्धि हिलती रहे प्रयोग होगा। प्रयोग के लिए एकाग्रता और स्थिरता चाहिए, और जब स्थिरता आ जाती है तो स्पष्टता आती है, स्पष्ट हो जाता है, स्वच्छ होने के कारण स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे आपको मिसाल बता दूं समझ में आ जाएगा, पानी इधर उधर से आया, उसके साथ कण आए, मिट्टी आई, धूल आई, मैला था, लेकिन जब इकट्ठा किया, एकाग्र हुआ और उसके बाद वो धीरे धीरे हलचल नहीं हुई, स्थिर होने लगा। तो जो भी उसके साथ बह करके आया वो धीरे धीरे बैठ गया जमीन में, नीचे चला गया, पानी बड़ा स्वच्छ हो गया। अब वो स्वच्छ हो गया तो उसके बीच में अगर 50 फुट गहरा पानी है और स्वच्छ है, कोई भी चीज आप डाल दो क्या होगा, आपको बड़े रूप में दिखाई देगी, है छोटी सी लगेगा बहुत बड़ी है और नजदीक दिखाई दे रही। इतनी गहरे पानी में 10 पैसे का सिक्का इतना बड़ा दिखाई देता है, क्यों? पानी स्वच्छ है, स्पष्ट है, कांच जैसा है। कई स्थानों पर आप देखेंगे ना, कई ऐसे पानी होते हैं मंदिर के आगे बनाए होते स्थान, बहुत स्वच्छ पानी होता, एकाग्र होता, स्थिर होता और उसमें स्पष्टता होती है। जब मन और बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, स्वच्छ हो जाए, बाबा की ऐसे किरणें आप अनुभव करेंगे जैसे वो आ रही हैं और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जैसे कांच साफ है, सोलार क्या है, कांच साफ है, उसको रोज धो करके साफ कर रहे हैं और सूर्य की तरफ वो कांच घूम रहा है, जिधर जिधर सूर्य की परिक्रमा है उधर वो कांच भी घूमता है, सूर्य की किरणें उस पर डायरेक्ट आती हैं, स्वच्छ कांच पर पड़ती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं, साथ में जाने वाला पानी पाइप इतना हीट हो जाता है, भाप बना देता है, ऊपर बैटरी चार्ज कर रहा है, इतनी गर्मी उसके अंदर पैदा हो जाती है। योग के प्रयोग के लिए इस ऐसी अच्छी एकाग्रता, बाबा की तरफ इतना अटेंशन, ध्यान और इतनी स्वच्छता चाहिए। जब बहुत मन बुद्धि स्वच्छ और साफ है, बाबा की डायरेक्ट किरणें यहां अनुभव होने लगेंगे और जो संकल्प आपके मन में होंगे उधर प्रयोग होगा। अब हम योगिक खेती क्या करा रहे हैं, सबसे प्रयोग करा रहे हैं और बहुत अच्छे जो भावना से कर रहे हैं वो सफलता पा रहे हैं, कोई केमिकल नहीं। लग गए रोग हम कहते बैठ जाओ योग में, हमारी बहनें बड़ा अच्छा कई जगह पर प्रयोग कराती हैं, कहती अच्छा लग गए रोग बताया करके, कोई दवाई नहीं डालना, मैं बैठी हूं मैं योग करूंगी। वो 2 बजे उठ करके उस खेत पर योग करती हैं, सकाश देती हैं, बाबा की शक्तियों को लेकर के वहां पर फोकस करती, पवित्रता की लाइट जा रही है, वो बीमारी दूर हो रही है। अब वो फोकस जो किया 2 बजे उठ करके योग की शक्ति, संकल्प की शक्ति का, वो सचमुच 2-4 दिन रुकने के बाद वो बीमारी ठीक हो जाती। वहां पर परीक्षा है धैर्यता की, वहां पर परीक्षा है। अगर किसान करने वाला सोचता है ये तो कीड़े लग गए हैं तो बहुत नुकसान हो रहा है, उसको भड़काने वाले, दवाई बेचने वाले बहुत सारे आते हैं, बताएंगे ऐसा करो ऐसा करो ये करो, अभी ये खत्म हो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा निश्चय से धैर्यता से जो होगा अच्छा होगा, हमारा प्रयोग होना चाहिए पहले। और सचमुच अगर वो दृढ़ता के साथ करता है सफलता उसको मिलती ही है, सफलता 100% मिलती है। तो आज वो प्रयोग से अच्छी खेती हो रही है, कई जगह पर हो रही, कर रहे हैं और कई फेल हो रहे हैं इसमें, क्योंकि उनकी भावनाओं में नेगेटिविटी है, होगा या नहीं होगा, करूं या क्या होगा, उसमें बहुत भावना और निश्चय चाहिए, बहुत पक्का विश्वास चाहिए जरूर होगा, अरे नहीं होगा ठीक है जो होगा हम आगे देख लेंगे, धैर्यता से शांति से प्यार से बाबा की शक्तियां लो यूज करो। इस प्रकार से किसी भी प्रकार किसी पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ये खेती की बात है, अपने व्यवसाय की बात है, संबंधों के टकराव की बात है, कई प्रकार की हमारे असफलताएं दिखाई देती हैं कार्य व्यवहार के अंदर, आप एकाग्र मन से बाबा की किरणों को स्थिर करो अपने ऊपर और यही फोकस उस स्थान पर डालो, इसको बाबा मनसा सेवा कहता है, सकाश देने की सेवा। लेकिन सकाश तभी निकलेगी जब बहुत अच्छा एकाग्र मन होगा, जितना हमारा पावरफुल योग होगा, शक्तिशाली योग स्थिरता और एकाग्रता के साथ अगर बन गया तो वो योग ही अनेक प्रकार की सफलता दिलाएगा। हमारे कई संस्कार ऐसे हैं, कई बार तो बाबा हंसी में, हमारी जगदीश भाई जी ने एक बार लेख लिखा था कि संस्कार ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ, बड़ा रमणीक लेख था, बहुत रमणीकता से लिखते थे और कई बार हंसते हंसते वो क्लास कराते थे। बोलते एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कुत्ते की पूंछ को हम सीधा करके दिखाएंगे, उसने एक पाइप लिया मोटा सा और पूंछ को पाइप के अंदर डाल दिया, 1-2 मास तक वो कहता है इसको निकालूंगा नहीं, अपने आप उसके अंदर पड़े पड़े सीधी हो जाएगी, लेकिन जब वो पाइप निकाला फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो कहता है ये जो संस्कार है ना ब्राह्मणों के, ब्राह्मणों के किसी के भी, ये संस्कार तो कुत्ते की पूंछ जैसे हैं। बाबा के बच्चे बने, इतनी ऊंची पालना, पढ़ाई, शिक्षाएं, श्रीमत सब मिल रहा है, लेकिन उन संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाते। बीज है, उस बीज को जला नहीं पाते। कभी भी ऐसा वातावरण बनता है, अंकुरित हो जाता बीज, बाहर आ जाता। कोई ऐसी घटना हो गई, कोई ऐसी बातें हो गई जो मन पसंद नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, गुस्सा जाता है, उत्तेजना आ जाती, आवेग आ जाता, आवेश आ जाता, एकदम वो ज्ञानी योगी जीवन कहाँ जाता है पता ही नहीं, वो संस्कार प्रकट हो जाते। पुराने पुराने भी 20 साल से ज्ञान में है, प्रयोग कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, लेकिन उन संस्कारों को जीत नहीं पाते। कहीं न कहीं वो संस्कार अपना रूप दिखा जाते, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर सोचते हैं ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, गलती हो गई मेरे से। लेकिन तुरंत जब जोश आता है उस समय कंट्रोल नहीं होता। क्या हम सभी कुछ समय इस बात को रियलाइज करें, क्योंकि परिवर्तन का आधार महसूसता है, और महसूस करके दृढ़ता के बिना परिवर्तन नहीं होता। महसूस भी कर लिया मान लो, फिर भी संकल्पों में दृढ़ता नहीं है, तपस्या नहीं है, चेंज नहीं होता। अगर मान लो मेरा विकार काम विकार का अंश है, बार बार परेशान करता है, स्वप्न में, संकल्प में दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, कुछ न कुछ उत्तेजनाएं आती हैं, शीतल नहीं हो पा रहे हैं, क्या हम बैठ करके इसको तपस्या के बल से प्रयोग करके इसको समाप्त कर सकते हैं? योग के 3 परिणाम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होने चाहिए। अगर सचमुच योगी जीवन है तो मैं विचार करता हूं ये 3 परिणाम हमारे जीवन से स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। एक बाबा कहता है योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल है, अंग अंग सुगंधित है। अगर मेरे अंग अंग सुगंधित नहीं है, शीतल नहीं है, कोई भी बात होती है, चाहे वो विकारों की बात हो उसमें उत्तेजित हो जाते, कोई दृश्य देख करके उत्तेजित हो जाते, उत्तेजनाएं कर्म इंद्रियों के अंदर आ जाती, या आवेश आवेग में आकर के हम कुछ बोल देते, कुछ कर लेते, क्या ये संस्कार, इस संस्कार का संस्कार हो सकता है? जब हम प्रयोग करें एकाग्र होकर के बहुत गहरी महसूसता के साथ, बाबा इस तपस्या भूमि में हम आए हैं, आपके घर में आए हैं, ये नेगेटिव संस्कार इतना समय ज्ञान में चलने के बाद भी चल रहा है, सब जानते हैं, अपने नेगेटिव संस्कार को कोई वर्णन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलबेलेपन की लेप पर उसको दबा के रखा है। जानते सब है मेरे अंदर ये अभी तक विकार का संस्कार है, क्रोध का है, लोभ का है, अहंकार का है, मोह का है, किसी न किसी प्रकार का छिपा हुआ है, ये वो बार बार जब समय आता तो निकलता है, नहीं तो बहुत अच्छी जीवन है, कुछ नहीं दिखाई देता है। जब परिस्थिति ऐसी आती है, कोई घटना घटती है, तब वो बाहर आ जाता है। इसके लिए प्रयोग करो, योग की शक्तियों का प्रयोग, और इतनी अच्छी एकाग्रता हो, स्पष्ट दिखाई दे कि ये विकारी आदत, ये संस्कार मेरा जो ब्राह्मण जीवन में मेरे लिए विघ्न रूप है, इसको मैं इसमें जला रहा हूं। योग अग्नि है और इस अग्नि में मैं इस संस्कार को जला रहा हूं। अब जला हुआ बीज तो कभी अंकुरित नहीं होगा, ऐसे रखा हुआ होगा तो अंकुरित हो जाएगा, इसलिए अपने संस्कारों को योग अग्नि में जलाने की जरूरत है। अब उसके लिए इतनी अच्छी एकाग्रता चाहिए, तपस्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए। जब वो स्थिरता बनेगी तो आपको महसूस हो जाएगा ये मेरा कमजोर संस्कार, ये मेरे ब्राह्मण जीवन में रुकावट डालने वाला, इसको मुझे परिवर्तन करना है। योग भट्टी का वास्तव में हमारा लक्ष्य ये है कि जो हमारे नेगेटिव संस्कार, जो ब्राह्मण जीवन में रुकावट डालने वाले संस्कार हैं, वो सब इस भट्टी में समाप्त होने चाहिए, ये योगी जीवन शीतल काया वाली बन जाए। तो पहली निशानी योगी की शीतलता, दूसरी निशानी सरलता, मोल्ड होने की नेचर। जैसे रियल गोल्ड की निशानी मोल्ड होना, रियल है तो मोल्ड हो जाएगा, मोड़ा जैसे चाहो उसको टेढ़ा मेढ़ा करके मोड़ कर दो, अगर मिक्स है तो टाइट है, मोड़ेगा ही नहीं। अगर योग के द्वारा मैंने अपनी संस्कारों को जलाया है, गलाया है, तो इतनी नेचर इजी नेचर हो जाएगी, भोली नहीं। भोलेपन में तो धोखा होता है, भोलापन तो नुकसान करता है। इजी नेचर, जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार का स्थान है, उन सब के साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। सरल नेचर, ऐसे नहीं मैं तो इसके साथ नहीं चल सकती, मैं तो यहां नहीं रह सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, वो इजी नेचर नहीं है। हम अपनी दादियों को देखते हैं, इतनी इजी नेचर की कैसे बन गई। आज गुलजार दादी को देखो, आज हमारी शांतामय दादी थी उनको देखो, कितनी इजी नेचर। जहां बिठा दो बैठ जाएंगी, जैसे जो खिला दो खा लेंगी। यीशु दादी आ जाए, प्रैक्टिकल इजी, एकदम उन्होंने अपने नेचर को मोल्ड कर लिया। तो सरल नेचर बन जाए, इजी नेचर बन जाए, सरलता और शीतलता के साथ साथ संतुष्टता आ जाए। संतुष्टता भरपूरता की निशानी है। ऐसे नहीं हाँ हाँ सब मेरे पास है, मैं तो संतुष्ट हूं, बाबा उसको संतुष्ट नहीं कहते है ही नहीं और कहो मैं संतुष्ट हूं, उससे क्या फायदा है। है सब कुछ, बाबा ने सब भरपूर किया है, मैं किसी से भेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। बाबा ने सब कुछ प्राप्ति कराई है, उनका चिंतन है, संपन्नता है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, स्थूल सूक्ष्म खजानों से, सब बाबा ने दिया है। लेकिन जब कोई किसी से भेंट करने लगता है, इसके पास इतना है, तब वो संतुष्ट हो जाता है। मेरे पास भी उतना होना चाहिए, कैसे होगा। उसका भाग्य, उसका पुरुषार्थ, उसकी प्रारब्ध उसके साथ है, लेकिन हम उसको भेंट करके सोचते हैं होना चाहिए और फिर रेस करते हैं, संतुष्ट नहीं रह पाते। करोड़ों रुपया होगा तो भी संतुष्ट नहीं, और कोई एक फटे हाल में होगा तो भी संतुष्ट रहता है। कहता है एक व्यक्ति बड़ा साहूकार था, बहुत करोड़पति था, थोड़ा सा एक घाटा पड़ गया अचानक बिजनेस के अंदर। पैसा बहुत, प्रॉपर्टी बहुत, सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा एक नुकसान हो गया और उस नुकसान का उसने इतना चिंतन कर लिया और उसके कारण उसको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन हो गया तो सब प्रकार की दवाई, सब प्रकार के वैद्य, पैसा तो था बहुत, सब प्रकार का इलाज किया गया, उसकी वो बीमारी खत्म ही नहीं हो। तो कोई एक संत गुजर रहे थे, उसको पता चल गया इसकी बीमारी का कारण क्या है। कहता है ऐसा करो, जो आदमी कभी दुखी न हुआ हो, सदा सुखी हो जीवन में, उसका कुर्ता लेकर के आ जाओ, उसको इसको पहना दो और पहनते ही ठीक हो जाएगा। कहते जब ये मिला तो बहुत छोटी बात थी, वो ढूंढने लगे, संसार में ढूंढते ढूंढते थक गए, कोई मिला ही नहीं सुखी सदा हो, कुछ न कुछ दुख सबके पीछे था। एक व्यक्ति मौत से बैठा हुआ था, बड़ा भजन गीतन गा रहा था, मस्त बैठा था, उसको बोला कि आप सदा सुखी हैं, बोला मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं। बोला अच्छा मिल गया लास्ट में, उसको पकड़ के ले आए, बोला ये इलाज कर सकता, ये सदा सुखी है। बोला भाई तुम सदा सुखी है तो अपना कुर्ता तो मुझे दे दे। बोला हमारे पास कुर्ता ही नहीं है इसलिए सुखी। उसको इतना लगा कि इसके पास ये कुर्ता भी नहीं है फिर भी इतना सुखी है, और मेरे पास करोड़ों रुपया है, थोड़ा सा नुकसान होगा फिर भी मैं दुखी हूं। उसका बीमारी ठीक हो गया। हम सब इस बात का विचार करें कि संसार में कितने दुख बढ़ रहे हैं, कितनी अशांति है, कितने प्रकार की, सब प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, और बाबा ने हमको उनकी भेंट में कितना सुखी बनाया है, फिर भी हम थोड़ी थोड़ी बात में असंतुष्ट हो जाते हैं। ये चीज नहीं है, ये चीज मेरे पास नहीं, ये साधन नहीं, और उसके पीछे भागते रहते हैं। कुछ नुकसान हो गया, सारा दिन वही सोचते रहेंगे ये क्यों हो गया, ये क्यों, अरे कोई हिसाब होगा, चुप तो हो गया। अपने मन को शांत रख, दो रोटी खा रहे हो, प्यार से रह रहे हो, क्यों इस पीछे जा रहे हो, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, तो कलयुग में होना ही है। मन को बड़ा शांत, सुखी, संतुष्ट बनाओ। तो जहां संतुष्टता है, जहां सरलता है, जहां शीतलता है, वहां योगी जीवन है। और योग यदि यथार्थ है तो ये तीनों प्राप्तियां दिखाई देंगी। प्रयोग करो, संस्कार जो भी ऐसे नेगेटिव हैं उनको ठीक किए जाएं। कोई ऐसी शारीरिक छोटी मोटी बीमारियां, कोई बड़ी बीमारी है भले दवाई लो, मना नहीं करता बाबा, कहता वो भी ड्राई फ्रूट खा लो, लेकिन कुछ प्रयोग भी करो, उससे ठीक हो जाएंगे। तो संस्कारों पर करो, व्यवहार में करो, अपने कार्य व्यवहार में करो, और उन काम करके योग के प्रयोग से सफलता प्राप्त करो। बहुत बड़ी संकल्प की शक्ति है और उससे सिद्धियां बहुत प्राप्त हो सकती हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं संगम युग पर सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। बाबा अपने हर बच्चे के हर संकल्प पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन उन संकल्पों की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्वार्थ वाली नहीं होनी चाहिए, हद वाली नहीं होनी चाहिए। हद की कामनाएं लेकर के रोज बाबा के आगे खड़े नहीं हो जाना, ये बाबा पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो। बाबा कहता तुम मास्टर दाता बनो, जैसे बाबा सबको दे रहा है ऐसे देना सीख जाओ, तो जब आप दोगे तो आप खुद भरपूर हो जाओगे। ठीक है, तो हम सभी योग और प्रयोग, सहज योगी बनो, और सहज योगी में अभ्यास करना। जब योग अभ्यास हम करते हैं ना, तो इस देह से डिटैच होकर के इस भ्रकुटी आसन पर बैठने का अभ्यास करो, ऐसे लगे मैं इससे बिल्कुल अलग हूं। वास्तव में योग की यथार्थ पहचान है देह और देही, शरीर और आत्मा का भिन्नता, अलग अनुभव होना। और वो जब अनुभव होने लगेगा, अपने आप आत्मा हल्की हो जाएगी, मन बुद्धि से उड़ेगी, बाबा के पास जाएगी, बाबा से शक्ति लेगी, सकास लेगी, और वो अच्छे शक्तिशाली योग का अनुभव कर सके। ओके, ओम शांति जी। वही बता रहा था ना कि कोई संस्कार है उसको पहले महसूस करो, महसूस करके उसको लिख डालो, बोझ है वो ना, वो अपने कागज पर उतार दो, रियलाइज करके फिर दृढ़ता का संकल्प लो। कुछ चीजों का उसमें बहुत त्याग करना पड़ता है। मान लो आज कोई ऐसा संस्कार मेरा नहीं जा रहा है, मैं कुछ दिन 21 दिन की ऐसी तपस्या करूं, 2 बजे उठ जाऊं, 3 बजे उठ जाऊं, 2 घंटा और कुछ नहीं करना, उस संस्कार को समाप्त करने के लिए मुझे तपस्या करनी है, एकाग्रता से बैठ करके सब प्रकार की बातों को छोड़ करके उसी लगन में मगन हो जाओ, वो संस्कार अपने आप चला जाएगा। लेकिन दृढ़ता से आपको संकल्प लेके उसके लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। आज देखो वाल्मीकि का भी संस्कार चेंज हुआ, तुलसीदास का भी संस्कार था, उनको भी चेंज किया। कितने हमारे जो संत हुए हैं, महात्माएं हुए हैं, उन्होंने भी अपने पिछले संस्कारों का वर्णन किया है कि मेरे क्या संस्कार थे और वो संस्कार कैसे अचानक परिवर्तन हुए जब उन्होंने महसूस किया, तपस्या किया, सिद्धियां प्राप्त की, तो वो संस्कार खत्म हो गए उनके। लेकिन उसके लिए कुछ सहन किया, कुछ त्याग किया, कुछ अभ्यास किया, तब चेंज हुए। तो हम अगर उसके लिए दृढ़ता का संकल्प करेंगे तो संस्कार चेंज हो जाएंगे। पांच मिनट हम सब बहुत अच्छी तरह से मन बुद्धि को एकाग्र करके इस साकारी वतन से निराकारी वतन का अनुभव करें। तो सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाओ, अलर्ट होकर भ्रकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को देखो और अंतर मन से यात्रा प्रारंभ करो। उड़ते उड़ते अपने उस साइलेंस होम में, निराकारी दुनिया में, ज्ञान सूर्य बाबा के बहुत समीप, उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठकर बाबा की सकास और शक्तियों का अनुभव करो।